अब आपके सामने प्रस्तुत है सरन कुमार लिम्बाले की अक्कर मासी। उस दिन स्कूल के अधिकांश बच्चे वन भोजन की तैयारी से स्कूल आए थे, पर दलित बस्ती के हम कुछ बच्चे कंधे पर स्कूली थैला लटकाए स्कूल गए थे। वहां जाने पर गुरुजी ने कहा, जाओ रोटियां बांधकर ले आओ, वन भोजन जाना है। छुट्टी की खुशी में हम बैलों की तरह दौड़ते भागते हुए घर की ओर लपके। चटनी रोटी बांधकर हम भी उन बच्चों में शामिल हुए जो शिक्षक के निर्देशानुसार कतार में खड़े हो रहे थे। उसी समय जना माए हाथ में छड़ी लेकर वहां आई, संगू को कतार से बाहर निकालते हुए पीटने लगी। संगू रोने लगा, वह हमारे साथ वन भोजन के लिए जाना चाह रहा था, पर जना माए उसे कतार से बाहर खींचने लगी। जना माए किसी की सुन नहीं रही थी, उसे पीटते हुए वह स्कूल कभी विठोबा अथवा कभी महादेव के मंदिर में लगा करता था। स्कूल के भीतर मतलब मंदिर में ब्राह्मणों तथा वैश्यों के लड़के बैठते थे। पहली कतार में एक ओर लड़के, दूसरी ओर लड़कियां, उनके पीछे चमारों के लड़के और सबसे पीछे महार लोगों के दरवाजे के निकट मातंग जाति का अर्जू हमारे साथ नहीं बैठता था। हम महार जमात के थे, इसलिए प्रति शनिवार पूरे स्कूल की जमीन को गोबर से लीपने का काम हमें दिया जाता था। गोबर इकट्ठा करके पूरा स्कूल लीपने के बाद शिक्षक मेरी सराहना करते। घर पर मैं किसी भी प्रकार का काम नहीं करता था, पर स्कूल का यह काम मुझे चुपचाप करना पड़ता था। एक दिन यह काम करते करते मैं मंदिर के गर्भगृह में चला गया। गर्भगृह में पहुंचने पर मुझे बेहद खुशी हुई, मुझे कोई देख लेगा, इस डर से मैं परेशान भी हो गया। श्रावण के महीने में स्कूल दूसरे स्थान पर लगता था, कभी गंगबाई के प्रशस्त मकान में तो कभी गांव के माड़वाड़ी के मकान में, कभी हनुमान मंदिर की दहली पर तो कभी लगी नशा के मंदिर में तो कभी भूताल सिद्धि के विशाल मकान में। मुझे याद आ रहा है कि एक बार मेरी बिरादरी के परस्या नामक लड़के ने भूताल सिद्धि की मूर्ति पर पेशाब कर दिया था। परस्या बहुत चालू लड़का था। मैं सोचता कि परस्या पर जरूर भगवान का कोप हो जाएगा, उसका पुरुषत्व खत्म हो जाएगा। बेवकूफ ने बेकार में ही मूर्ति पर पेशाब किया। मैं घबरा गया, तौबा तौबा करता रहा। धर्म से मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी मनुष्य। गांव के अन्य लड़के भगवान की मूर्ति के निकट जा सकते थे, पर हम नहीं जा सकते। कक्षा में पढ़ाया जाता है कि बच्चे ईश्वर द्वारा निर्मित फूल हैं, तो क्या हम भगवान द्वारा निर्मित फूल नहीं हैं? वास्तव में हम लोग गांव के बाहर फेंके गए कूड़े कचरे की तरह थे। एक ही स्कूल में अनेक जाति की इकाइयां थी, हमारी बस्ती का संबंध गांव से नहीं था, मानो गांव का विभाजन कर हमें गांव से तोड़ा गया हो। बचपन से यहाँ जीते हुए और रोते हुए भी मैं पराये की तरह ही रहा। उम्र के साथ यह परायापन बढ़ता ही गया था। मेरा बचपन मुझे आज भी भयावह लगता है। सावन माह के कारण स्कूल तेली की कोठी में लगता था। मैं पहली बार उस कोठी में गया था, लड़कों में जाकर बैठ गया। उस कोठी के मालिक के लड़के महाद्धा ने मुझे कहीं से देख लिया, वह भागता हुआ आया, मेरी स्लेट तथा पुस्तकें छीन ली और पूरी शक्ति से वह मुझे पीटने लगा। आंखों के सामने तारे चमकने लगे, सारे बच्चे मेरी ओर देख रहे थे। शिक्षक आए, उन्होंने उन सबसे दूर दरवाजे के पास बैठने के लिए मुझसे कहा। मैं उस स्थान पर अकेला बैठ गया, भीतर ही भीतर घुटते हुए ध्रुव की तरह स्थिर। जब स्कूल मारवाड़ी की कोठी में लगता तो मैं बैठक के नीचे बैठता, लड़के लड़कियां ऊपर बैठते, शिक्षक और ऊंची जगह पर बैठकर सवर्णों के लड़कों को गणित समझाते। हम नीचे जूतों की तरफ बैठते, सभी ओर चप्पल और जूते। रत्ना नामक लड़की की चप्पल बड़ी खूबसूरत लगती, शिक्षक की चप्पलों को मैं छूता तक नहीं था, सोचता चप्पलों को छूत लग जाएगी। गुरुजी की चप्पल मुझे राम की पादुकाओं की तरह लगती। मुख्य गांव क्या होता है बचपन में मुझे मालूम ही नहीं था। महारों की बस्ती में ही खेलता था, वहीं बड़ा हो रहा था। कचरे का ढेर, कुत्ते, सुअर तथा झोपड़ी, यही संगी साथी थे। जगन्नाथ पटेल के घूरे पर दिन भर खेलता रहता। पहली बार जब मैंने स्कूल देखा था वह दिन आज भी मुझे याद है। छोटे छोटे बच्चों से भरा हुआ कमरा, मैंने पहली बार कुर्सी देखी, ब्लैक बोर्ड देखा, गुरुजी को देखा, छड़ी देखी। मुझे गुरुजी के छड़ी के प्रति अद्भुत उत्सुकता थी। सही अर्थों में मेरी पढ़ाई तीसरी से शुरू हुई। 2 साल तक तो शिक्षकों ने मुझे कागज पर ही उत्तीर्ण किया था, मुझे इसका कुछ भी पता नहीं था। शिक्षक बुलाने आते तो मैं भाग जाता, छिपकर बैठता। आज लगता है कि हम लोग, मैं, परस्या तथा उम्ब्या काफी चालू थे। शिक्षक को देखते ही हमें शरारत सूझती, शिक्षक शिक्षक तो कितना, बच्चे भागे पकड़ लवड़ा। चिल्लाते हुए हम तीनों दौड़ने लगते। हम उम्र लड़कों के साथ मैं पहले दिन स्कूल गया था, मल्या मारत्या तथा निल्या जहाँ बैठते वहीं पर मैं भी जा बैठा। उस दिन मुझे जोर से पेशाब लगा था, पर शिक्षक से पूछूं कैसे? शिक्षक मुझसे काफ़ी दूर थे, उन्हें पास बुलाने की हिम्मत भी नहीं थी। पेशाब के लिए जाना हो तो अपनी छोटी उंगली अलग से दिखलानी पड़ती है, यह मुझे उन दिनों मालूम नहीं था। मेरी गोदावरी वहीं पर प्रकट हो गई, पेशाब निकर से बाहर निकलने लगा, बच्चे चिल्ला उठे, मैं घबरा गया। शिक्षक ने मुझे कक्षा से निकाल बाहर किया, गीले निकर से मैं बाहर आया। बाद में 2 दिन तक मैं स्कूल नहीं गया। निकर का मतलब आज के अंडरवियर, बहुत हल्के दर्जे के सूती कपड़े से बने। 7वीं कक्षा तक ऐसे ही कपड़े के निकर पहनता था, वे भी फटे हुए। माँ ने पीछे से पैबंद लगा दिए थे, वह भी फटकर जब उपस्थ दिखाई देता तो मैं कमर पर तौलिया लपेट लेता। पेशाब की छुट्टी हुई कि बच्चे छेड़ते, कंकर मारते, महार महार कहकर चिल्लाते, मैं बेहद परेशान हो जाता। एक दिन गांव के बच्चों ने मुझे बिना मतलब के घेर लिया। मेरा साथी इल्या भाग खड़ा हुआ। बच्चे आवारा बैल की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। मैं बेहद परेशान हो गया, लगा कि आकाश इस शरीर पर गिर रहा है। राम कलकोटे नामक एक सवर्ण लड़के ने मुझे जोर से थप्पड़ लगा दिया, मैं रोने लगा, वे सब भाग गए। बाद के दिनों में मैं जब कभी राम को देखता तो थर थर आने लगता। 15 अगस्त तथा 26 जनवरी को प्रभात फेरी निकलती, सभी बच्चे स्कूली वर्दी में आते, मैं अलबत्ता निकर में शर्ट खोज लेता। प्रभात फेरी केवल गांव में ही घूमती थी, मुझे लगता वे सब मेरी बस्ती में भी आए, मेरे बस्ती के लड़के मुझे इस प्रभात फेरी में देख लें, ऐसी इच्छा होती। शिक्षक हमें कतारों में ले जाते, कतार में चलते तथा नारे लगाते हुए देखकर मेरी नानी उल्लसित हो उठती, उनका हृदय भर आता, अपना जीवन सार्थक लगता। मेरी नानी का नाम था संता माई, उन्होंने ही मुझे पाला पोसा है। मेरी नानी सड़क पर झाड़ू लगाने का काम करती, 15 अगस्त या 26 जनवरी को झाड़ू लगाते हुए मुझे वह दिखती। उन्हें देखकर मुझे होश आता और मैं जोर से नारे लगाता, मुझे देखकर वह हंसती, बहुत उत्साह से झाड़ू लगाती। घर लौटने पर वह मुझे वात्सल्य से चूमती, उनके मुँह से दुर्गंध आती, मिस्सी लगाने के कारण उनके दांत काले दिखते। स्कूल छूटने पर हम लोग नदी के किनारे खाना खाने जाते, रेत में बैठकर खाते, नदी में तैरते, नदी के ऊपरी घाट पर सवर्ण पानी भरते, उनकी औरतें कपड़े धोती, नदी के निचले घाट पर धनगर व कुनबी पानी भरते, नहाते, कपड़े धोते और अपने जानवरों को भी नहलाते। उसके और निचले घाट से हम लोगों को पानी लेना पड़ता, नहाना तथा कपड़े धोने पड़ते। ऊपर के दोनों हिस्सों का गंदा पानी हमारे हिस्से में आता, हम उनके घाट पर जा नहीं सकते थे। एक दिन मैं नदी के बीच पानी में खड़े होकर पानी पी रहा था, किसी माँ ने अपने छोटे बच्चे के मैले से भरा कपड़ा शायद धोया था, उसी मैले का सैलाब मेरे नज़दीक आ रहा था। उबकियाँ आई, पर कहूँ किससे, और फिर जल से अधिक पवित्र कौन सी वस्तु है। सवर्णों के घाट से आए गंदे पानी को हम लोग पचा रहे थे।